Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर्वशक्तिमान भगवान अल्लाह सुभानहू व तआला की प्रशंसा। जब हम इस तरह के एक विशाल निर्माण की ओर देखते हैं, जब हम इसकी आधारभूत संरचना का विश्लेषण करते हैं, यह हमारी सोच को उत्तेजित करता है कि हमें अपने बारे में विचार करना चाहिए। जैसे इस विशाल भवन की नींव है, हमें भी एक मजबूत आधार की आवश्यकता है, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यह एक मूलभूत सिद्धांत है जो हमारे लिए बाइबल में और नबियों के चरित्र में, विशेष रूप से हमारे नबी मोहम्मद में स्पष्ट किया गया है। उन पर शांति हो। और अब हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वह है अखलाक, व्यवहार, तरीका। सच्चे विश्वास का तरीका क्या है? ये किस पर होना चाहिए? हम नए नियम में पाते हैं कि वहां भी एक चर्चा हुई थी एक चट्टान के बारे में, एक ठोस चट्टान, एक नीम, किस बात पर विश्वास करना है। और वह क्या था कि पीटर, जिसे पेट्रा के नाम से भी जाना जाता है, खैर हम वहां थे जब हमने आपको हाल ही में वह कार्यक्रम दिखाया था। और हम इस्लाम में भी यही पाते हैं, और यह है कि अपने चरित्र को सच्चे विश्वास पर आधारित करना। इस्लाम में भी यही है, अपने चरित्र को सच्चे विश्वास पर बनाना। एक व्यक्ति का ऐसा विश्वास जो सबूत और प्रमाण पर आधारित है, क्या यह तर्क संगत है? क्या यह तर्क संगत है? आप खुद देख सकते हैं। जब हम इस बिल्डिंग को देखते हैं जो सलाहुद्दीन अल अय्यूबी के समय में बनी थी, तो हमें यह पता है वह मुस्लिम इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनके चरित्र और स्थिति को संभालने के तरीके के लिए, वह वास्तव में कुर्दिस्तान से थे। मैं दुनिया के उस हिस्से के प्रति थोड़ा पक्षपाती हूँ, मेरे भी कुछ रिश्तेदार वहीं से हैं। मैं उनके चरित्र का अध्ययन करना चाहता हूँ और यह देखना चाहता हूँ कि इस्लाम ने उनके लिए क्या किया, और अन्य प्रसिद्ध लोगों के बारे में भी। इस्लाम किसी व्यक्ति के पास आने से पहले वे अपने मन की इच्छाओं और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर आधारित अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। विशेषकर प्रतिशोध के विचार के संबंध में हम बराबरी करना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने हमारे साथ कुछ किया। यह बहुत प्रसिद्ध है सलाहुद्दीन के जीवन में, यह जानना कि उस समय उसके दुश्मन जो यरूशलेम में लड़ रहे थे, वे खून बहा रहे थे और ऐसी बुराइयां कर रहे थे जो आप सोच भी नहीं सकते। वे बस वे बुरे थे। एक अवसर पर हज के लिए मक्का जा रहे तीर्थयात्री, इन दुश्मनों ने उन निर्दोष लोगों पर हमला किया जिनकी कोई रक्षा नहीं थी। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उसकी बेटी को भी मार डाला। तो जब सलाहुद्दीन को मौका मिला, जब वह इस प्रतिशोध को देने की स्थिति में था और सभी के साथ निपट सकता था, उसने कहा, मैं केवल एक को चाहता हूं जो हत्या का दोषी था। इसके पीछे कौन था? यही वह है।
क्या तुम जानते हो उसने क्या किया?
वह इस हद तक गया कि जब लोगों ने इसे सुना और देखा तो उन्होंने कहा, यह अजीब आदमी है, क्योंकि वह हम सभी को मार सकता था, लेकिन वह केवल उस एक को चाहता था जो दोषी था, जिसने इसे करने का आदेश दिया था, जो ट्रिगर के पीछे था कहने के लिए। और इसी तरह उसने निपटारा किया। लेकिन उसने यह केवल अपनी महानता के कारण नहीं किया, बल्कि उसकी व्यक्तित्व शिक्षाओं पर आधारित थी, इस्लाम के सच्चे मूलभूत शिक्षाओं पर। क्योंकि इस्लाम में हम कुरान से जानते हैं, हमें दूसरों द्वारा किए गए कार्यों की परवाह किए बिना सबसे अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। जब हम मुसलमानों को देखते हैं जो अपने स्वार्थ में गिर जाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ है। सीधा विरोध। विरोध में वास्तविक इस्लाम हमें क्या सिखा रहा है? अगर कोई, जैसे बाइबल कहती है, अगर कोई आपके दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दें, इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना चेहरा आगे बढ़ाएं ताकि कोई आप थप्पड़ मारे, बल्कि इसका मतलब है कि आप प्रतिक्रिया नहीं देते। आप तुरंत यह नहीं कहते कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे अभी अपने अधिकार चाहिए। یہ واسطو میں اسلام کی ایک سندر شکشا یہ ہے کہ حالانکہ آپ کو اپنے ادھیکار لینے کی انومتی ہے، یہ آپ کا ادھیکار ہے، لیکن اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو معاف کر دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ پھر کیا، کیونکہ اس استھتی میں قیامت کے دن آپ کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے اور مجھے معاف کیا جانا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ بھگوان مجھے معاف کریں، کیونکہ انتتہ اگر میں معاف نہیں کرتا تو میں اللہ سے معافی کی امید کیسے کر سکتا ہوں قیامت کے دن۔ اور یہ کئی وشیشتاؤں میں سے ایک ہے، اسلام میں ایک چیز ہے جو چرتر کو بناتی ہے، اور میں یہ سوچنے کے لیے واپس آنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں، کیونکہ ہم یہاں ایک کارن سے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ عمارت کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ موڈ میں آئیں، سمجھیں، واسطو میں سمجھیں یہ کیسا لگتا ہے۔ اسلام سے جو بھاونا آتی ہے، مجھے پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہونا چاہیے، اگر میں قرآن اور سنت کی شکشاؤں کے ساتھ رہوں، محمد کی راہ پر ان پر شانتی اور آشیرواد ہو، تو میں نشچت ہوں بنا شک کے میں نیائے کے دن صحیح رہوں گا۔ آئیے ہم اپنے چرتر پر اور بات کریں۔ اسلام میں سب سے مہتوپورن چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ادھیکار، حق، ہم اسے حق کہتے ہیں۔ اور مجھ پر سب سے ادھک ادھیکار کس کا ہے؟ کون؟ اور وہ سرو شکتیمان بھگوان ہے، اس نے مجھے بنایا، وہ مجھے بنائے رکھتا ہے، اس نے مجھے سب کچھ دیا، اس لیے اس کے پاس سب سے ادھک ادھیکار ہیں، اور اسے بنا کسی سانجھی کے اکیلے ہی پوجا جانے کا ادھیکار ہے، یہ نشچت ہے۔ یہی ہمیں پرانے نیم میں ملتا ہے، یہی ہمیں نئے نیم میں ملتا ہے، اور یہی ہمیں قرآن میں ملتا ہے، وہ سبھی ایک ہی بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجو نہیں، تمہیں میرے سوا کسی اور دیوتا کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ اس کا ادھیکار ہے۔ اس کے بعد اس کے سبھی سندیش واہکوں کا انوسرن کرنا، ان کی باتوں کو سننا اور ان کے انوسار چلنا چاہیے۔ ہم ان کے چرتر اور ان کے طریقے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں ان کی باتوں کو سننا چاہیے، وہ آپ کو یہ کرنے کے لیے اور وہ نہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے نبی کا انوسرن کرنا چاہیے۔ موسیٰ کے سمے لوگ ان کا انوسرن کرتے تھے، محمد کے سمے لوگ ان کا انوسرن کیا۔
ہمیں انتم نبی کا انوسرن کرنا چاہیے۔
موسیٰ کے سمے وہ نہیں کہیں گے کہ ہم ابراہم کا انوسرن کریں گے، موسیٰ کی پرواہ نہیں، نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو ایک اور سندیش واہک بھیجا ہے تو آپ کو سننا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے کیا لایا ہے، کیونکہ سمے بدلتے ہیں لیکن دھرم نہیں بدلتا۔ لیکن ہم اسے کیسے لاگو کریں، ہم اسے کیسے سمجھیں،
ہم اپنے دھرم کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ اس لیے بھگوان ہمیں نئے سندیش واہک بھیجتے ہیں۔ اب انتم سندیش واہک آ چکا ہے اور یہ سندیش سرکشت ہے، یہ سندیش قرآن ہے، قرآن اللہ کی محمد کو دی گئی تلاوت ہے جبرائیل کے مادھیم سے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جس وشے پر آج بات کر رہے ہیں اس کے ہر حصے کو ہم ٹھوس پریکشن کیے گئے ثبوتوں کے ساتھ ستیاپت کر سکتے ہیں۔ جب آپ وچار کرتے ہیں کہ دنیا کی جن سنکھیا کا ایک چوتھائی، ہم 17, 18, 19 ارب کی بات کر رہے ہیں، منشیہ پرتھوی پر گھوم رہے ہیں، وہ سبھی مانتے ہیں کہ قرآن کیول ایک ہے، اس کے دو روپ نہیں ہیں، یہ سچ ہے۔ وہ سبھی مانتے ہیں کہ یہ کیول عربی میں ہے اور یہ آج بھی موجودہ ہے، تلاوت کے روپ میں اور لکھت روپ میں، جیسے کہ یہ پیغمبر محمد کے سمے میں تھا، ان پر شانتی ہو۔ واہ، اب ایک آدھار ہے
آپ کے پاس، ایک ایسا ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے، قرآن میں جو لکھا ہے اس پر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
کیا آپ مارگ درشن چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں۔
وہ آپ سے کہہ رہا ہے، وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی سندیہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے مارگ درشن ہے جو ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ وشواس کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، جن کی اسلام میں مانگ ہے، یہ لوگ وہی ہیں جو اس نیو پر ہوں گے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ جیسے یہ عمارت ایک پراچین نیو پر کھڑی ہے، پھر بھی یہ تتووں کے خلاف اتنی مضبوط ہے، ان دشمنوں کے خلاف بھی جو اسے حملہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے بچی؟ क्योंकि इसे एक मजबूत नींव पर बनाया गया था, और उसी तरह हम आप और मैं को अपनी चरित्र की नींव को उसी चीज पर बनाना है। कुरान हमारी नींव है, मार्गदर्शन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और रास्ते में अल्लाह और उसके रसूल के बाद फिर किसका सबसे अधिक अधिकार होगा? नबी मोहम्मद ने कहा, आपकी माँ। उन्होंने कहा, क्या उस समय अरबों ने किसी भी महिला को, यहां तक कि अपनी माँ को भी सम्मान नहीं दिया? उसने कहा, तुम्हारी माँ। फिर उन्होंने कहा, ओह ओह, और फिर कौन? उसने फिर से कहा, तुम्हारी माँ। और फिर कौन? तुम्हारी माँ। और फिर तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता पिता, ओह एक पल रुको, चलो वापस चलते हैं। यह सही है, यह पांचवा नियम है पुरानी वसीयत में, 10 आज्ञाएं। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, इस्लाम में भी यही है, कुरान में भी यही बात है। जो सम्मान और गरिमा तुम अपने माता पिता को देते हो वह किसी और इंसान से अधिक है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वे मुस्लिम नहीं हैं, हाँ अगर वे मुस्लिम नहीं हैं तो भी तुम्हें उन्हें सम्मान और गरिमा देनी चाहिए। और अगर तुम नहीं करते, तुम कल्पना कर सकते हो कि न्याय का दिन पर अल्लाह वह तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्म शौचालय में हैं, तुम चले गए, तुम खत्म हो गए, क्योंकि तुमने अपने माता पिता की देखभाल नहीं की। इसलिए यह इस्लाम में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, और उसके बाद यह किसके साथ है? अपने आप के साथ। तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, और हम जल्दी से कहेंगे मेरे शरीर को मत देखो, ठीक है, यह सच है। मुसलमानों की गलतियों पर मत जाओ, इस्लाम से सीखो कि यह तुम्हारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। समझ में आया? इसे और आगे बढ़ाओ। फिर अधिकार किसके हैं? तुम्हारे साथी के, फिर तुम्हारे बच्चे, फिर तुम्हारे पड़ोसी, फिर सभी समुदाय के। इस धरती पर हर इंसान का तुम पर अधिकार है, क्योंकि तुम इंसान हो और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारे पास एक नैतिकता है, तुम्हारे पास उस चरित्र का उपयोग करने की क्षमता है, और आगे बढ़कर अच्छे कार्य करने की। यही इस्लाम ने हमें सिखाया है। आमिनु व आमिलु सालेहात, तो विश्वास और कानून के बाद यह मुआमला है, कर्म और कार्य है। अगर वे दूसरों की मदद के लिए कुछ रचनात्मक नहीं हैं, तो वे क्या हैं? अगर तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम कुछ बातें करेंगे और तुम्हें सोचने देंगे। क्या तुम जानते हो कि इस्लाम में मानवाधिकारों के बाद जानवरों के अधिकार हैं? क्या? हाँ, जानवरों के अधिकार होते हैं। पैगंबर की कहानियों में जिन जानवरों का उल्लेख किया गया है, हम जानते हैं कि उन जानवरों को अधिकार दिए गए थे, स्पष्ट अधिकार। उन्हें परेशान न करें, उन्हें सजा न दें, उन्हें नजरअंदाज न करें। एक महिला जो दिन रात प्रार्थना कर रही थी और उपवास कर रही थी, लेकिन उसके पास एक बिल्ली थी, उसने उसे जंजीर में बांध रखा था, वह उसे बाहर खाने नहीं जाने देती थी। इस महिला के दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप बिल्ली मर गई, और न्याय के दिन भगवान ने उसे माफ नहीं किया, बल्कि उसे नरक की आग में डाल दिया। किस लिए? उस बिल्ली के साथ बुरे व्यवहार के लिए। एक और महिला जो वेश्या थी, और यह एक महिला के लिए सबसे खराब चीजों में से एक है, लेकिन फिर भी उसके पास एक दिल था। वह नीचे गई, कुएं की गहराइयों में चढ़ गई, और जब वह वहां थी तो उसने प्यास बुझाई। वह बहुत प्यासे थी। जब वह ऊपर आई और उसने कहा, हे भगवान, यहाँ एक कुत्ता है, वह मर रहा था, उसके पास पानी नहीं था। वह फिर से नीचे गई उस कुएं की गहराइयों में, और उसने पानी लिया, और वह बाहर आई और उसने उस कुत्ते को दिया। क्योंकि उसने ऐसा किया, भगवान ने उसे माफ किया और स्वर्ग दिया। क्या आप सोच सकते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं, हम पेड़ों और पौधों के अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं। इस्लाम कहता है कि इन पौधों के अधिकार हैं। युद्ध में भी आप इन पेड़ पौधों को नहीं तोड़ सकते, नहीं, आप नहीं कर सकते, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। और फिर खनिजों का क्या? अब आप कहने वाले हैं, नहीं एक मिनट रुकिए, आप इसे बहुत दूर ले जा रहे हैं। हमारे नबी मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने अपने एक अनुयायी से कहा पानी के बारे में, क्योंकि वह पूछ रहा था हमें वुजू करते समय कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए प्रार्थना से पहले। उन्होंने कहा कि संयमित रहो। उन्होंने पूछा कितना संयमित? उन्होंने कहा भले ही आप नदी में हो, पानी बह रहा है, फिर भी पानी के प्रति बहुत सावधान रहें। और यह 1400 साल पहले की बात है, जब ग्रीन पीस नहीं था, और आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो अधिकारों का क्या? व्यवहार, चरित्र, ये वे चीजें हैं जो आपको बनाती हैं। जैसे हम अभी जिस इमारत में हैं, और आप आपके पास कुछ ऐसा है जो आपके बाद भी रहेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को ऐसा ही सिखाएंगे। यह इस्लाम से सीखी गई कुछ सुंदर बातें हैं। यह कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो हमारे मन और दिल को समझने के लिए खोलते हैं। इस्लाम वास्तव में किस बारे में है, तो देखते रहिए। हमारे पास और भी है। हमारी वेबसाइट इस्लाम रिलीजन पर जाने के लिए प्रेरित करें कॉम, इसे देखें। हम मिलेंगे और भी। अगर आप
around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you.